Thank you. Prabhupada aquí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Narayanam Namaskrityam.
Narayanam
Naram Saiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam.
Devim Saraswatim Vyasam.
Tatojaya Mudiraye.
Tatojaya Mudiraye.
Natsaprayer Suvadresu.
Natsaprayer Suvadresu.
Nityam Bhagavata Sevaya.
Nityam Bhagavata Sevaya.
Bhagavati Ruttamas Loke.
Bhagavati Ruttamas Loke.
Bhaktir Bhavati Naishtati.
Srimad Bhagavatam, Kandi 1, Adhyay 5, Shlokramang 5. Sabdhaṁ ka parichay. Vyāsa uvāca. Asti. Eva. Me. Sarvam. Idam. Tvaya. Uktam. Tathāpi. Na. Atma. Parituṣyate. Me. Tat. Moolam, avyaktam, agadabodham, prichhamahe, swa, atmabhava, atmabhutam.
Vyasa uvacha.
Asteva me sarvam idam tayoktam.
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 Tatha pinatma parituṣyate me.
Tatha pinatma parituṣyate me.
Tatha pinatma parituṣyate me.
Tatha pinatma parituṣyate me.
Tanmol avyaktam agadabodham.
Tanmol avyaktam agadabodham.
Tanmol avyaktam agadabodham.
Tanmol avyaktam agadabodham.
Prichhamahe tvam bhavatma bhutam.
Prichhamahe tvam bhavatma bhutam.
Prichhamahe tvam bhavatma bhutam.
Prichhamahe tvam bhavatma bhutam.
Asteva me sarvam idam tvayoktam.
Asteva me sarvam idam tvayoktam.
Tatha pinatma parituṣyate me.
Tatha pinatma parituṣyate me.
Tanmol avyaktam agadabodham. Prichhamahe tvam bhavatma bhutam.
Prichhamahe tvam bhavatma bhutam.
Vyasa uvacha.
Vyasa uvacha.
Asteva me sarvam idam tayoktam.
Asteva me sarvam idam tayoktam.
Tatha pinatma parituṣyate me.
अनुवाद। श्री व्यास देव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब सही है, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है। इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है, और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। इसका सदा ही पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकवादी ज्ञान का कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो। अतः ऐसे विषाद के मूल कारण को निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। नारद के पास क्यों जाया जाए इसकी व्याख्या आगे की गई है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानञ्जना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुर्वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सावण रघुनाथान्वितं संसदीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंस राधा कंस नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दिशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
अभी व्यासदेव बोलना शुरू किए। पूरा होल मैटर क्या है कि व्यासदेव जी ने बहुत कुछ लिख डाले, खास करके वेदों को चार भाग किया, गणेश जी के द्वारा लिखवाया, महाभारत भी लिखवाए, बहुत सारे पुराण भी लिखवाए। बहुत सारे पुराण में कृष्ण कथा भी है, पद्म पुराण में कृष्ण कथा है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण कथा है, कितने सारे पुराणों में है, सभी पुराण स्कंद पुराण में भी है, अग्नि पुराण में भी है, और अलग सभी पुराणों में कृष्ण के बारे में है। सब कुछ लिखे, सब कुछ लिखने के बाद एक अजीब सा कमी उनके अंदर महसूस हो रहा था, और समस्या यह था उस कमी का कारण वो समझ नहीं पा रहे थे। क्या है मेरे अंदर, वो क्या कमी है समझ में नहीं आ रहा है, मैं प्रसन्न क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ मुझे चाहिए, और हर एक चीजों का आवश्यकता के अनुसार उपस्थिति है, नॉलेज भी है, सब कुछ है, फिर भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ, इसलिए बहुत परेशान थे। हाँ लग रहा था उनको, खुद ही सोच रहे हैं फिर, क्या मैं भगवान के बारे में ज्यादा नहीं बताया हूँ, इसलिए क्या ज्यादा नहीं लिखा हूँ, इसलिए शायद मेरे अंदर एक कमी महसूस हो रहा है, ऐसा करके उनको लग रहा था। इतना नॉलेजेबल व्यक्ति और खास करके भगवान के साहित्य का अवतार है कि नहीं, और स्वयं सत्यावेश अवतार है भगवान का, ऐसा कमी महसूस तो नहीं होना चाहिए। सत्यावेश अवतार मतलब भगवान है, और भगवान मतलब वो हमेशा अपने में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति है, उनके अंदर कभी किसी चीज की कमी नहीं होता है। अब तो काम तो जो भी इच्छा करते हैं वो कामना पूरा हो जाता है उनका, ऐसा व्यक्ति है। जस्ट इच्छा करेंगे तो तुरंत वो पूरा होगा, उनका एक सत्य संकल्प शक्ति है भगवान का, सत्य संकल्प शक्ति कहते हैं उसको। तो जस्ट भगवान ने इच्छा किया तो तुरंत वो पूरा कर दे। मगर यहाँ पे व्यासदेव इतने दुखी, कई जगह पे ऐसा है, जगन्नाथ जी के बारे में सब देखेंगे कि जो व्यक्ति आत्माराम है, हमेशा आत्मा में वो आनंदित रहने वाले व्यक्ति है, अब तक आम है, ऐसा व्यक्ति का दुख ब्रज के विरह में, चैतन्य महाप्रभु का रोना, जगन्नाथ जी का राधा के विरह में रोना, कृष्ण के दूध के विरह में रोना यशोदा के सामने, और दूध पीने के लिए इच्छा होना, भूख लगना, ये सब गजब गजब चीजें हैं जो कि सुप्रीम लॉर्ड के अंदर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम लॉर्ड परम पुरुष ऐसे है, वो संपूर्ण है, चारों तरफ से परिपूर्ण है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि उनको ये चीज की कमी है, ये चीज उनको चाहिए और है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सब कुछ उनके अंदर परिपूर्ण मात्रा में है। कभी भी किसी भी वस्तु का बाहर से उनको आवश्यकता नहीं है, वो अपने में ही पूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को भी भूख लग जाता है, इसलिए यशोदा का दूध पीने के लिए वो अड़ बैठते हैं। दूध न मिलने पर क्रोध भी आता है, दूध न मिलने पर क्रोध आता है। देखो ये एक भौतिक कार्य जैसा दिखाई पड़ रहा है, हमारे इंद्रिय भोग के लिए हम कुछ चाहते हैं और हमारे इंद्रिय भोग संतुष्ट नहीं हुआ हमारे इंद्रिय, जिसके कारण हमको क्रोध आया है कि नहीं। क्रोधा क्या है उस वक्त, ध्याय तो विषय संघर्ष संघात समझाते काम कामात क्रोधा भी जाते है कि नहीं। तो सबसे पहला कामना होता है, उनको इच्छा होता है काम, तो कामना पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध होता है। क्रोधात भगवत सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशा बुद्धि नाश, फिर मटकी फोड़ देते हैं, इन्हें बुद्धि भी नाश हो जाता है। ये सब चीजें सुप्रीम लॉर्ड के अंदर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, मगर वो क्या करते हैं, इस धराधाम में लीलाएं करने के लिए इस प्रकार के रोचक लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों का मन, अपने भक्तों के मन को जीतने के लिए इस प्रकार के एक्टिविटीज को करते हैं। हर एक कार्य के पीछे उद्देश्य, ठीक वैसे यहाँ पर देखिए व्यासदेव जो स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार है, उनके अंदर कमी महसूस होना एक गजब बात है। ठीक है भाई, दूसरा कुछ होता तो चलता, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पूरे वेदों का संकलन किया, वेदों के साथ साथ सारे शास्त्रों को, संपूर्ण शास्त्रों का रचना किया, सभी पुराणों का रचना किया, उपवेदों का रचना किया, इतना सब कुछ, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ को रचना किए है कि नहीं। इस भागवतम के श्लोकों के अनुसार वेदों से भी महत्व महाभारत को दी गई है, इसके पहले वाले तीसरा नंबर श्लोक में बताया गया, महान ग्रंथ महाभारत का भी रचना किया तुमने। ऐसे महाभारत का रचना करने के बाद भी वो असंतुष्ट है, इससे साफ जाहिर होता है कि कृष्ण भक्ति के बिना, कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बिना व्यक्ति कुछ भी पढ़ ले, कितना भी पंडित बन जाए, कुछ भी वो अध्ययन कर ले, उस व्यक्ति की अंदर कमी निश्चित रूप से रहेगी, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, उसको पूर्ण संतुष्ट जो आनंद है वो उसको प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे कई कथन है, जैसे कि हर जगह बताया गया वेदों में, अगर हालांकि वेदेश सर्वर हमें वह विद्यो, सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही जानने वाला व्यक्ति हूँ, फिर भी वेदों से हम कृष्ण को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वेदों में सीधा सीधा कृष्ण के बारे में व्याख्या नहीं किया गया है। वो वे ब्रह्म, निराकार, निर्गुण, ऐसे शब्दों को जिसमें यूज किया गया है, ऐसे शब्दों को वेदों में यूज किया गया, इसीलिए व्यक्ति वेदों को पढ़ने पर हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, वो नहीं समझ पाता है कि वो मतलब यही है। वो मतलब ये जो नंद का लड़का वही है, वो नहीं समझता है। निर्गुण निराकार बोलने पर या परम ब्रह्म परमात्मा करके जो शब्दों को यूज किया गया वेदों में, इन सारे शब्द वो परम पुरुष के लिए, कृष्ण के लिए करके इस बात को नहीं जान पाता है। नहीं, कृष्ण नहीं है, वो तो निराकार ब्रह्म है। निराकार ब्रह्म क्या है, निराकार शब्द का अर्थ क्या है, निर्गुण शब्द का अर्थ क्या है, इन सारे चीजों को सीधा सीधा अगर वेदों को पढ़ा जाए तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। और व्यासदेव जी ने वर्णन रचना ही इस प्रकार से किया कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, और खुद लेखक खुद परेशान है, वो खुद कंफ्यूज है। राइटर खुद कंफ्यूज है कि मैंने क्या लिख डाला, उससे कुछ नतीजा ही नहीं है, ऐसा हो गया राइटर के साथ। तो इस प्रकार से एकदम से मायूस लग रहे थे, दुखी दुखी लग रहे थे। महाभारत भी लिखा, हालांकि महाभारत में कृष्ण की कथाएं हैं, कृष्ण की कथाएं हैं, और महाभारत की दृष्टि से अगर खाली महाभारत से ही देखेंगे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन निकलेंगे कृष्ण। भागवत भगवत गीता को इस द्वारा न जाके डायरेक्ट महाभारत की ओर से अगर देखेंगे कृष्ण को, तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन लगेंगे कृष्ण। और ऐसा लगेगा कि हर एक एक्टिविटी जो है वो पांडवों को बचाने के लिए, और पांडव उनके बुआ के लड़के हैं, इसलिए बहुत बड़ा, बहुत सारा ये सिस्टम बनाया उन्होंने उनको परास्त करने के लिए, ऐसा प्रतीत होगा। इसलिए इससे भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि महाभारत के अंदर गीता जैसा महान ग्रंथ भी है कि नहीं, भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है, फिर भी असंतुष्ट है। तो इस प्रकार की स्थिति था। तो इससे क्या साफ समझ में आता है कि कृष्ण भक्ति या कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बिना हमारे हृदय को क्या नहीं मिलेगा, वो जो आनंद है और संतुष्टि हो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भागवतम की दसवें स्कंद में अब देखेंगे पूतना लीला के बाद जब सप्तासुर का लीला शुरू होने का जो अध्याय है, लगभग सातवें अध्याय में, वहाँ पे क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी ऐसा परीक्षित महाराज, हे भगवान ये जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो कैसे मालूम है, जो रुग्ण व्यक्ति है उसके लिए दवाई जैसा है और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए टॉनिक जैसा है, रसायन जैसा है, भवो सदत मनोभिरामात। तो ये जो कृष्ण की लीलाएं हैं कैसे हैं, हमारे जैसे बीमार व्यक्ति के लिए दवाई है और एक जो व्यक्ति हृष्ट पृष्ट है तंदुरुस्त है, यानी कृष्ण के हम उच्च कोटि के भक्त नहीं अर्थात हम बीमार हैं, और जो उच्च कोटि के भक्त है उनके लिए और वो कैसे वो टॉनिक जैसा काम करता है, रसायन जैसा काम करता है, हमारे लिए पिल्स मेडिसिन जैसा काम करता है। तो ये कृष्ण की कथाएं हैं। तो इसीलिए व्यासदेव जी के अंदर ये कमी, मगर ये व्यासदेव जी के अंदर कमी ऐसा नहीं कि सच में कमी, इस कमी को क्रिएट किया गया था। भगवान ने स्वयं व्यासदेव के अंदर इस कमी को पैदा किया। जैसे अर्जुन कृष्ण के सामने थे, जहां कृष्ण तहां नाय मायार अधिकार, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, तो कृष्ण के सामने अर्जुन खड़े थे। कृष्ण के सामने खड़े होते हुए भी क्या अर्जुन माया में हो सकते हैं, अज्ञान में हो सकते हैं? कभी नहीं, असंभव वाली बात है, एकदम विपरीत वाली बात है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के अंदर उस कमी को क्रिएट किया, वो अज्ञान को क्रिएट किया। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्ण के मित्र जो इतने दिनों से कृष्ण के साथ और कृष्ण के सामने खड़ा है और वो जानता है कृष्ण है, फिर भी वो अज्ञान में हो सकता है? नहीं, वो अज्ञान को क्रिएट किया गया, वो कमी को उनके अंदर किया गया। क्यों किया गया? कि इस मानव सभ्यता के उद्धार के लिए, खास करके वो बद्ध जीव जैसे हम है इस संसार में पीस रहे हैं अज्ञानवश, ऐसे अज्ञान जीवात्माओं को ज्ञान रूपी ये शास्त्रों को प्रदान करने के लिए भगवान ने उनके अंदर इस कमी को क्रिएट करते हैं, इस अज्ञान को क्रिएट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण की दिव्य लीलाओं को लोगों को प्रदान करने के लिए उनको एक माध्यम चाहिए, अपने लीलाओं को देने के लिए लोगों को, तो वो माध्यम व्यासदेव जी को मनाना था। इसीलिए ही व्यासदेव जी का उत्पत्ति हुआ है कि नहीं, इसको संकलन करने के लिए। हालांकि उन्होंने सब कुछ लिख डाला, सब कुछ रचना कर डाला, इसलिए उनके अंदर ये कमी को क्रिएट किया भगवान ने। तब जब इस प्रकार से थे और क्रिएट होने के बाद भी कैसे हुआ, वो अपने आप से सॉल्व नहीं हुआ। हालांकि वो सक्षम है, वो जगत गुरु है व्यासदेव। संसार का मूल गुरु कौन है? व्यासदेव है कि नहीं? संसार का मूल गुरु व्यासदेव है कि नहीं? हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, व्यास पूजा मनाते हैं, जो कुछ भी मनाते हैं, ये सब कुछ किसके लिए है? व्यासदेव जी के लिए ऑफरिंग्स है कि नहीं? तो मूल गुरु है और स्वयं काबिल थे, फिर भी इसको प्रस्तुत करने के लिए कि जब व्यक्ति इस प्रकार की तनाव अवस्था में रहता है उसको एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, एक प्रामाणिक गुरु ही नहीं एक भक्त के शरण में जाना चाहिए करके भगवान ने क्या किया, तुरंत नारद मुनि का प्राकट्य वहां पे कराते हैं। ये सब एकदम प्री प्लानिंग है, सुव्यवस्थित। नारद मुनि वहां आते हैं, दुखी थे पहले अध्याय में देखा, फिर नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। नारद मुनि पहुंच के क्या करते हैं, अपने शुरू के श्लोकों में देखे रहेंगे, जस्ट मुस्कुराते हैं। वो बहुत सुंदर मुस्कुराते, देखो इस तरह देवर्षि नारद सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि व्यासदेव को संबोधित किया। उधर भगवत गीता देखो दूसरे अध्याय सातवां नंबर श्लोक में वो रोने लगा और कृष्ण समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, और कृपणता के कारण कमजोरीपन के कारण मैं मेरे समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे बताइए मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, और मैं इसी क्षण से आपका शिष्य बनता, एकदम थका हुआ रोया हुआ। तो भगवान क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के फिर उनको बोलते हैं, वहां पे देखो भगवान गीता में वो आएगा। कृष्ण हंस के बोलते हैं, हाँ उसके पहले कार्पण्य दोष से पहले असोचान अनुसो प्रत्यावाद भाषा से बता सुनो बता सोचो नान सोचो थे पंडिता। क्या तुम यार बड़े बड़े बातें करता है और एम वक्त में ऐसे युद्ध नहीं करूंगा करके बोलता है, है कि नहीं? वो गुरु का पदवी को नहीं उधर दोस्ती का नाते इस प्रकार से फटकारे। फिर जैसे उन्होंने बोला शिष्यस्य हम साधिमाम तम प्रपन्नम, फिर उन्होंने गीता का ज्ञान जो है वो शुरू करते हैं। तो वहां पे भी देखेंगे कृष्ण मुस्कुराते, वहां कृष्ण क्यों मुस्कुराते मालूम है, अर्जुन की इस प्रकार की स्थिति को देख के, इतना बड़ा धनुर्धारी, इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है कि नहीं, अभी वो कैसे जो हाथ से गांडीव सरक गया, रो रहा है और दुखी होकर बैठा है और बोलता है मैं तुम्हारा शिष्य बन गया, इसलिए भगवान हंसते हैं वहां पर। यहां पे भी व्यास मुनि नारद मुनि हंसते हैं, व्यास देव जो स्वयं साहित्यिक अवतार है वो मायूस होकर बैठे हुए हैं, और इसका रीजन असलियत में किसको मालूम था, नारद मुनि को पता था, और वहां पे अर्जुन का कारण कृष्ण को पता था इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। यहाँ पे भी इसका कारण उनको मालूम है नारद मुनि को, इसलिए वो मुस्कुराते हैं, संबोधित किया। नारद मुनि मुस्कुराते क्योंकि व्यासदेव जी के तथा उनके असंतोष का कारण को भले बातें जानते थे। कोई व्यक्ति दुखी होगा और हमको उसका सोल्यूशन मालूम रहेगा या वो दुखी क्यों मालूम रहेगा, तो हमको हम थोड़ा हंसेंगे ना, है कि नहीं, क्योंकि मालूम है क्यों दुखी है ये व्यक्ति। तो इस प्रकार से हुआ। बाद में पूछते हैं व्यासदेव, क्या आपने तो सब कुछ लिखा, हाँ व्यासदेव जी को पूछे आप तो मन या शरीर के आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को मानकर संतुष्ट हो, फिर आप तो भली भांति सभी अध्ययन किया है ग्रंथों का, महाभारत जैसे ग्रंथ को तैयार किया है, और सभी प्रकार के वेदों के फलों को विशद रूप से व्याख्या किया है। फिर कहते हैं अरे आप तो निराकार ब्रह्म के विषय को भी प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध कर दिया, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने वाला जो नॉलेज आपने तो लिख डाला पूरा उसको भाई, तो इतना सब होते हुए भी आप क्यों एकदम हताश होकर बैठे हुए हैं, जानते हैं फिर भी पूछते हैं। इस बात को सुन के ये आज के श्लोक में व्यासदेव जी बोलते हैं, नारद मुनि जैसे हंस के पूछे अरे आप तो बड़े विद्वान है, आप तो महाभारत लिखा है, आपने निराकार ब्रह्म का ज्ञान को भी प्रदान किया लोगों को, और आप आत्म साक्षात करके सारे चीजों को बता डाला, फिर भी यार दुखी क्यों बैठे हो इतने बड़े ज्ञानी होके। तो व्यासदेव बोलते कि ओ अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्म परितुष्यते मे, आपने मेरे बारे में जो सब कुछ बोला ना वो सही है, वो सब सही है, क्योंकि मैं सब कुछ लिखा हूँ, सब कुछ किया हूँ, सब कुछ नॉलेज है मुझे, फिर भी ये कमी क्या है वही मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और यही मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यही चीज। वह सब सही है, इन सब के बावजूद मैं असंतुष्ट हूँ, ये सब नॉलेज है, निराकार ब्रह्म का प्रस्तुत किया, महाभारत को लिख डाला, सब कुछ कर डाला, फिर भी असंतुष्ट। अतः मैं आपसे अपने असंतोष का मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, अब बताओ क्या है, मैं क्यों असंतुष्ट हूँ। और दूसरा आपको क्यों पूछ रहा हूँ मालूम है, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के लड़के हो, स्वयंभू के बच्चे हो। आत्मभव का अर्थ होता है अपने से प्रकट होना, भव मतलब प्रकट होना, आत्म मतलब अपने से। आत्मा शब्द, ये आत्म शब्द बहुत जगहों पर यूज किया जाता है, यहाँ पे आत्म मतलब स्वयं, अपने से प्रकट होना, स्वयं भव आत्मभव, और आत्मभूतम अर्थात लड़का बच्चा, है कि नहीं? बच्चे को अपना आत्मा सदृश माना जाता है, या बच्चा या लड़का पिताजी का शरीर का अंग है, ये आत्मभूतम शब्द इसके लिए यूज किया गया। आत्मा मतलब उसका शरीर, भूतम उससे प्रकट, या उससे प्रकट हुआ शरीर, आत्मभूतम मतलब संतान। तो आप ब्रह्मा जी के लड़के हो, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। दो विशेषताएं, एक है कि आप ब्रह्मा जी के लड़के हो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, दूसरा आप इसे दूसरा, मैं आपने सब कुछ जो बताया वो सही है, फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ और उसका कारण मैं आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ब्रह्मा जी के लड़के हो। ब्रह्मा जी के लड़के होने के कारण आपके पास ये सारा नॉलेज है, ये प्रामाणिकता के लिए। ये आत्मभूतम शब्द ठीक है आप बताइए, ऐसे बोल सकते थे, ये क्यों बोला? नहीं नहीं, आप ब्रह्मा जी के लड़के हो प्रामाणिकता के लिए, क्योंकि आप एक प्रामाणिक व्यक्ति हो जो मेरे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। आप कैसे प्रामाणिक हो? क्योंकि आप किसके बेटे हो? ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी में विशेषता क्या है, मेरे बाप में विशेषता क्या है? कि वो तुम्हारा बाप जो है वो अपने से प्रकट हुआ है, वो कोई साधारण या भौतिक माता पिता उनका नहीं है। स्वयं भूव या आत्मभव का अर्थ होता है जो अपने से प्रकट होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। आपने कई जगह सुना रहेगा स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू लिंग करके सुना, जो लिंग अपने से प्रकट हुआ है कि नहीं? स्वयंभू लिंग करके कहते शिव जी का स्वयंभू विग्रह है, स्वयंभू विग्रह भी कई जगह है, जैसे कि तिरुपति बालाजी है, स्वयंभू विग्रह है, अपने से प्रकट हुए हैं, उनको कोई बनाया नहीं है। और फिर उधर जाएंगे वो रंगनाथम में, वो स्वयंभू है, अपने से प्रकट होते हो। और इधर ये है कांचीपुरम में वो वरदराज स्वामी, ये सब अपने से प्रकट होते हैं। जो अपने से प्रकट होते हैं उनको स्वयंभू कहा जाता है, जिसका कोई मेटेरियल मदर एंड फादर, माता और पिता नहीं है। कभी कभी शिव जी को भी स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी से डायरेक्ट प्रकट होते हैं, उनके भी कोई माता पिता, भौतिक माता पिता नहीं है, इसलिए उनको भी कभी कभी स्वयंभू कहा गया। हाँ, मनु क्योंकि ब्रह्मा जी से डायरेक्ट प्रकट होते हैं माता पिता के बिना, इसलिए कई जगह पे स्वयंभू को यूज किया जाता है, मगर ज्यादातर ब्रह्मा जी के लिए स्वयंभू शब्द को यूज किया गया है। वो प्रथम है, सबसे पहले प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कैसे प्रकट होते हैं? कौन से विष्णु से, कौन से विष्णु से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी? कौन कौन विष्णु से प्रकट होते हैं बोलो? गर्भदक्षा विष्णु से प्रकट होते हैं, गर्भदक्षा विष्णु से, फिर कारणदक्षा, गर्भदक्षा विष्णु ब्रह्मांड का, गर्भदक्षा विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, इसलिए वो स्वयंभू कहा गया। और विशेषता यह है, गर्भदक्षा विष्णु से प्रकट हुआ तो ठीक है, मगर सबसे पहला व्यक्ति जो भगवान से ज्ञान प्राप्त किया वो कौन है? वो भी ब्रह्मा जी है कि नहीं? आदि कवि, और उनका लड़का है नारद मुनि, तो स्वाभाविक है कि इनके अंदर वो क्वालिटी है ना, वो योग्यता है कि मेरे जो समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसीलिए व्यास देव जी ने इस प्रकार से उनको संबोधित किया कि आप तो आत्मभव आत्मभूतम है, और इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, कृपया मेरे बारे में बताओ। ये तो श्लोका था, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं देखो। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है, ये जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है दो लाइन का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमेशा किसके ऊपर इंगित होता है मालूम है क्या? वो भागवत जैसे ग्रंथ को वर्णन कर रहे हैं, मगर वो हमेशा ध्यान देते हैं कि मेरा ऑडियंस कौन है, किसको मैं बता रहा हूं। तो हमेशा हमारे दिमाग को समझने जैसा ही उन्होंने तात्पर्य में बतलाते हैं। आप देखेंगे इस प्रभुपाद जी से पहले भी भागवत को कई आचार्यों ने टीका किया है कि नहीं? उन आचार्यों की टीका हिंदी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, कई आचार्यों का आ चुका है, मगर उसको डायरेक्टली पढ़ के एक आम आदमी श्रीमद् भागवतम को सही तरीके से समझ नहीं सकता है। और अलग अलग आचार्य जो अभी भी उनके ग्रंथ प्राप्त होते हैं भागवत के ऊपर, भले ही उन्होंने कृष्ण की लीला के मधुरता को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि एक बार हम कथा सुन रहे थे राधागोविंद महाराज के, और अलग अलग ग्रंथों में भी है कि पूतना ने आंख बंद क्यों किया, उसके ऊपर कुछ आज 10-15 लोगों ने क्या क्या बोला, पूतना ने आंख बंद क्यों किया, और उसको सुनने के लिए बहुत मजा भी आ रहा है कि नहीं? उसमें रस मिलता है प्रस्तुत होता है। हालांकि प्रभुपाद जी ने इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं किया पूतना लीला में, प्रभुपाद जी ने इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं किया, फिर भी प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी का जो पर्पस है, उतना महत्वपूर्ण क्यों है? भले ही इस प्रकार के चीजों को प्रभुपाद जी ने नहीं प्रस्तुत किया, मगर वो हमारे जैसे बद्ध जीवों की जो दिमाग है, मॉडर्न एज के जो बुद्धि है, उस बुद्धि को कैसे वो कृष्ण भावनामृत में लगाएंगे उसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। और हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हमारे जो व्यावहारिक समस्याओं को भागवतम और भगवद्गीता के तात्पर्य के द्वारा वो समाधान करते हैं। देखिए यहाँ पे व्यासदेव जी का समस्या क्या था, अपने में तकलीफ था ना, उसके अंदर कुछ तो कमी है, कमी था ना, और असंतुष्ट थे ना। इस संसार में हम सब ऐसी स्थिति में, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सभी फैसिलिटीज रहते हैं, फिर भी देखो सभी लोग असंतुष्ट है कि नहीं। कई सारे लोग हैं संसार में, पैसा है, गाड़ी है, रिलेटिव है, सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी असंतुष्ट है। हम अपने बारे में भी थोड़ी देर के लिए सोचे, सब कुछ व्यवस्थित है भगवान के द्वारा, देन दो दो का दो टाइम की चौपाती और रहने के लिए छत, ये सबको अवेलेबल है, फिर भी हम असंतुष्ट है हर एक व्यक्ति, क्यों मालूम है? ये कारण है कि प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य का उद्देश्य है, हमारे जो व्यावहारिक जीवन की समस्याओं को प्रभुपाद जी ने भागवतम के श्लोकों के द्वारा वो तुरंत समझा दिया। क्या कारण है? इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को शरीर या मन समझता है, यही मेरा आत्मा है, यही मैं हूं करके समझता है, ये शरीर ही मैं हूं। और कुछ लोग ने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो सोचते हैं मेरा मन ही मैं हूं, ऐसे सोचते हैं, मन में जो आता है वही करते हैं। इसी कारण हम सभी डिस्ट्रेस रहते हैं, हम सभी लोग क्या करते हैं, दुखी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, हमारे अंदर वो जो आनंद है वो प्रस्फुटित नहीं होता है, यही मूल कारण है। इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो सारे शरीर से या मन से संबंधित होता है, इसलिए भौतिक नॉलेज जितना भी है, देखो शरीर को चलाने के लिए नहीं तो मन को खुश करने के लिए वो किया गया है। पूरा ज्ञान, पूरा मेटेरियल स्टडी जो भी आप देख लीजिए, शरीर या मन को खुश रखने के लिए पूरा नॉलेज है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि इसके सदा ही ये कब पता नहीं लगता है लोगों को, लोगों को ये चीज पता नहीं लगता है, ये समस्या है। अगर बीमार व्यक्ति वो ये नहीं समझेगा कि मैं बीमार हूं तो फिर वो कैसे डॉक्टर के पास जाएगा, फिर वो क्यों दवाई खाएगा? समझ रहे? आप कभी कभी पागल जानते हैं ना, पागल पागल होते हैं ना, वो पागल कभी भी अपने आप को पागल नहीं समझेंगे, समझते हैं? वो क्या बोलते हैं, मैं पागल नहीं हूं, ये सभी लोग पागल है। एक बार भक्ति रघुनाथ स्वामी महाराज जी का एक उदाहरण में सुन रहा था, एक व्यक्ति जेल में था, राष्ट्रपति जेल गए थे घूमने के लिए, राष्ट्रपति जो है वो पागलखाना में था और राष्ट्रपति पागलखाना गए थे,
प्रधानमंत्री
थे क्या वो गए थे, तो वो इंग्लिश में बात किया और बहुत सोफिस्टिकेटेडली बात किया, बहुत अच्छी तरह से, तो आश्चर्य हो गए कि इतना अच्छा व्यक्ति ये क्यों यहाँ पे है। फिर बोले कि आप यहाँ क्यों है, सब लोग पागल है। क्या क्या था वो बोल रहा था कि
मैंने बोला कि
इसने मुझे याद डाल दिया,
तुम भी धीरे बोलो
देखो तुमको भी इधर डाल देगा ऐसा करके। तो पागल व्यक्ति अपने आप को पागल करके नहीं समझता है, इसलिए ट्रीटमेंट करने के लिए वो इनकार करता है। तो इस संसार में हम सब ऐसे ही है, हम इतने बीमार हैं और इतना मेटेरियली एकदम से शोषित हो रहे हैं भौतिक शक्ति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दुखी है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि मैं सुखी हूँ और मैं बीमार नहीं हूँ। क्यों मालूम है? क्यों? हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो बुद्धि है, वो कहाँ तक काम कर रहा है? ये शरीर और मन तक काम कर रहा है। एक तो हम शरीर को कैसे खुश रखें उसके बारे में सोच रहे हैं, नहीं तो मैं अपने मन को कैसे खुश रखें उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके आगे हम सोच ही नहीं रहे। और हमको ऐसा कोई ज्ञान इस संसार में नहीं दी जा रही है कि हम अपने लिए सोचे। कभी कभी हम उपवास करते थे ना, हमारे घर से बोला करते थे, आत्मा को इतना कष्ट क्यों देता है? हमारे घर में बोला करते थे, आत्मा को इतना तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो फिर सोच क्या है? ये शरीर ही आत्मा है, ये शरीर ही आत्मा है। और कभी कभी मालूम है मन में कुछ चीजें चाहत होता है मन में, तो ऐसे कई बदमाश लोग हैं,
ऐसे आध्यात्मिक संस्थाएं चलाते, वो कहते आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, मन को मारना नहीं चाहिए, मन में आया तो कर लेना चाहिए, मन को मारना नहीं चाहिए। हाँ, ये नॉनसेंस फिलोसफी है। तो पूरा होल सिस्टम उसके ऊपर बेस्ड है, शरीर और आत्मा, शरीर और मन, शरीर और मन। मन में मेरा अच्छा लगा ऐसा करूंगा, मेरे मन शंकरा उसको मन में जैसा अच्छा लगता वैसे करेगा, ये नहीं देखेगा भक्त क्या बोला है, क्या चाहिए मंदिर को, मन में आया। ये सबसे बड़ा तकलीफ है, क्योंकि हमें जो ऑर्डर दी गई है या जो शास्त्रों का ऑर्डर है वो इससे परे रहता है। इससे हो सकता है हमारे मन को और शरीर को तकलीफदायक है, मगर वो हमारे लिए हितकारी है, वो हमारे लिए हितकारी है। अर्जुन को कृष्ण बार बार बोल रहे कि तेरे को मारना ही पड़ेगा इन लोगों को, मगर ये अर्जुन के मन के लिए भारी कष्टदायक था। अपने दादाजी को मारना, गुरुजी को मारना, भाइयों को मारना भारी कष्टदायक है, मगर वो ही उसके लिए हितकारी था, वो श्रेयस था उसके लिए। प्रेयस मतलब जो उसको क्या अच्छा लग रहा था, मैं इनको नहीं मारूंगा, सलाह सुशूषा करूंगा, भले ही मैं भीख मांगू, अर्जुन बोल रहा था, मगर मैं मेरे संबंधियों को नहीं मारूंगा, ये उसको अच्छा लग रहा था। प्रेयस, प्रेयस का अर्थ होता है जो अपने को अच्छा लगता है, प्रेयस का अर्थ होता है जो हमारे लिए अच्छा है। दो चीज अलग अलग है, कुछ चीजें हमें अच्छा लगता है मगर कुछ चीजें हमारे लिए अच्छा है। तो भगवान और गुरु जो होते हैं हमारे साथ, हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें प्रदान करते हैं, मगर व्यक्ति हमेशा अपने को जो अच्छा लगता है उसी चीज के पीछे पड़ता है। तो ये गुरु का ड्यूटी है, इसीलिए व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, और ऐसा गुरु के पास जो गुरु हमको डांट कर हमें बतला सके, ये मेन चीज है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले क्या किया, गुरु की पदवी को जब पकड़ा, सबसे पहला फटकारा, अरे तुम बड़े बड़े बुद्धिमान का बात कर रहे हो और जिस चीज के लिए रोना नहीं चाहिए उस चीज के लिए रो रहे हो। यहाँ पे भी आप आगे के श्लोक में हम चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर तरीके से सोफिस्टिकेटेड वे में व्यासदेव जी को नारद मुनि डांटते हैं, आगे के दो चार श्लोकों में हम देखेंगे, सुंदर तरीके से एकदम से डांटेंगे उसको व्यासदेव जी को, क्या नहीं किया आपने और क्या किया, ऐसे करके डांटेंगे। तो ये बहुत अहमियत रखता है, मगर सभी लोग इस चीज को क्यों नहीं जान पाते हैं, ये फॉल्स ईगो के कारण। ये जो सेंटेंस है ना, प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन का पहचान को अपना पहचान आत्मा के साथ करता है, इस सेंटेंस का एक शब्द में बोले तो वही फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो, ईगो एंड फॉल्स ईगो दो प्रकार, ईगो मीन्स अहंकार, फॉल्स ईगो मीन्स मिथ्या अहंकार, ये दो चीज है। अहंकार बुरा नहीं है, मिथ्या अहंकार बुरा है। अहंकार मतलब जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दिस इज ईगो, ये अहंकार है। और अहंकार सबके अंदर होना चाहिए, और वो अहंकार क्या है कि मैं श्री कृष्ण की पास उनका अंश हूं और उनका सेवक हूं, मैं सर्वेंट हूं, ये ईगो है। फॉल्स ईगो क्या है कि मैं शास्त्र स्वरूप दास और ये संसार का परिचालक हूं, ये फॉल्स ईगो है। या मैं ब्रह्मचारी हूं, ये भी फॉल्स ईगो है। ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कोई भी, ये सारे चीजें पोस्ट एंड पोजीशन है, ये केवल सामाजिक व्यविधान है खाली। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, ना हम ब्रह्मी न तो गृहपति ना वानस्थ यतिर्वा किंतु प्रज्ञा निखिल परमानंद पूर्णामृतधीर गोपी भर्तु पद कमल योर दास दास अनुदास। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ, ना ही ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास हूँ, मैं तो गोपियों का भरण पोषण करने वाला हूँ, कृष्ण की दासों के दासों के दास हूँ, ये हमारा ईगो है। और फॉल्स ईगो मतलब मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं यंग हूँ, मैं ओल्ड हूँ, मैं यहाँ का लीडर हूँ, ये सारे चीजें होता है ईगो। तो ये ईगो कब आता है, जब व्यक्ति अपने आप को शरीर या तो मन समझता है, तभी उसको सम्मान अपमान सुख दुख मेरा पराया ये सारे चीजें पता लगेगा। वो जो स्तर है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न आकांक्षति, वो कब आता है, जब व्यक्ति मैं और मेरा से उठेगा, अर्थात ये देहात्म बुद्धि से उठेगा, ये फॉल्स ईगो जिसके अंदर खत्म होगा,
बाहर के दृष्टि से हम बोलते हैं कि प्रभुजी मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, सर्वेंट हूँ, मगर उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये अपने इस्कॉन में ये एक स्टाइल हो गया बोलने का, मगर उसको कितना उतारते हैं उस हिसाब से, मैं तो आपका सेवक हूँ प्रभुजी। हरि बोल शंकर प्रभु, हम लोग बुलाते ना गलत प्रोनाउंसिएशन मालूम है, हरि बोल शंकर प्रभु, प्रभु मीन्स मालिक, तो मालिक को कैसा बुलाएगा, बुलाएगा कैसा बुलाएगा, प्रभु जी करके बुलाएगा कि नहीं। हम सभी इसी प्रकार से यूज करते हैं, अपने आप को व्यवहार करते हैं, संबोधित करते हैं, ये सारे चीजें बहुत मायने रखता है, सूक्ष्म चीजें हैं। इसीलिए जो ऐसे लेवल के पहुंच चुके हैं उन व्यक्तियों के इसको देखेंगे, उनके व्यवहार को, मैंने कई लोगों के साथ पाला पड़ा है, जैसे राधे श्याम प्रभु के साथ कुछ दिनों का, भक्ति रसान महाराज इन लोगों के साथ वृंदावन में कई दिनों का, इन लोग का व्यवहार ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी इरिटेट हो गया, प्रभु जी अपने असिस्टेंट को सेवक को अगर नाम लेके भी बुलाएंगे तो भी एकदम रूढ़ता से ऑर्डर नहीं देंगे, हालांकि वो सेवक उनका कपड़ा धोता रहेगा मगर उनका ऑर्डर देना नहीं रहेगा, ऐसा पता नहीं कब हमारे अंदर इस प्रकार का आएगा, है कि नहीं। तो ये सारे चीजें क्यों है मालूम है, ये इस चीज से अपने आप को हम शरीर या मन करके समझते हैं, तभी हमको बाकी चीजें लगता है। जैसे अपने आप को शरीर और मन समझते हैं ये सारे चीजें आता है, और निश्चित रूप से उसी समय हमारे अंदर कमी या दुख जो है वो महसूस होता है, क्योंकि कोई मान देगा निश्चित रूप से सम्मान देगा, अपमान देगा और अपमान देगा तो दुखी दुख लगेगा, और मान देगा तो हम फूल जाएंगे। हर जो व्यक्ति अपने आप को शरीर नहीं समझेगा वो कृष्ण के सेवक समझेगा, उसको फर्क नहीं गिरेगा, कोई अपमान भी करेगा कोई सम्मान भी गिरेगा। हाँ, इसका अर्थ वो आदमी बेशर्म नहीं होता है बेशर्म नहीं होता वो बात हाँ मेरे को फर्क नहीं कर रहा बात दे रहा, बेशर्म लोग भी ऐसा होता है, बेशर्म नहीं बेशर्म नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है, तो ये जो कमी है हमारे अंदर की ये कब होता है, जब हम अपने आप को ये शरीर या मन करके समझते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आप श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भूल जाइए, आप जस्ट श्लोका को देखिए, तो श्लोका में क्या मिलेगा आपको, जस्ट व्यास देव जी के अंदर की कमी नारद मुनि प्रकट, और नारद मुनि ने और नारद मुनि का गुणगान करते हुए पूछ रहे हैं कि आप ही मुझे इस संकट से निकाल सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हमारे बात को यहाँ पे लाया कि भाई हमारे अंदर भी इस प्रकार की कमियां है, और उसके लिए हमको फिर क्या जाना चाहिए, नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना चाहिए। तात्पर्य में लास्ट में लिखे कहां पहुंचना चाहिए, नारद जैसा प्रामाणिक व्यक्ति जो ब्रह्मा जी से सीखा हुआ व्यक्ति है। तो हमें भी ऐसा श्री प्रभुपाद जी के शरण में जाना चाहिए जो कि तो ब्रह्मा जी की परंपरा में नारद के परंपरा में आए हुए हैं। और नारद के पास क्यों जाना चाहिए, एक तो ब्रह्मा जी के एक तो कारण यहाँ मिल गया कि ब्रह्मा जी के पुत्र है और प्रामाणिक स्रोत से है, ब्रह्मा जी स्वयंभू है इसलिए भगवान का आदि आदि कवि है, और आगे के श्लोक में और रीजन मिलेगा, वो खुद बोलेंगे व्यासदेव जी कि आप किस प्रकार से सक्षम है मेरे समस्या को समाधान करने के लिए, ये बात कल के श्लोक में पता लगेगा। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की, श्रील व्यास देव की, श्रील नारद मुनि की मंचा कल पता।